शुरू करते हैं, किताब वगैरह खोले हैं। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ نوح کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں اس کلاس میں. سورہ نوح میں اللہ تعالی ہمیں نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے نوح کو بھیجا اس قوم کی طرف کہ ان کو ڈراؤ اور ان سے یہ کہو کہ تم میرے رب کی عبادت شروع کر دو، اپنے رب کی، میرے رب کی، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایک دردناک عذاب آئے، اور میں تمہارے پاس ایک ڈرانے والا ہوں جو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کی باتیں تمہیں بتاتا ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دو اور اس سے ڈرنا شروع کر دو اور میری اطاعت کرنا شروع کر دو. صحیح ہے، یہ پوائنٹ یاد ہے آیت نمبر 3 کے اندر کہ اللہ کی عبادت شروع کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن اطاعت کسی کرو، میری اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی تمہیں آواز نہیں آئے گی، بلکہ جو رسول ہوتا ہے اس کی آواز تم تک آتی ہے، وہ رسول تمہارے پاس موجود ہوتا ہے. تو اس کی اطاعت کرنے کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فرمایا تھا یغفر لکم کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، من ذنوبکم، اور تمہارے اوپر سے جو عذاب آنے والا تھا تمہارے نافرمانی کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر سے ٹل جائے گا، لیکن جو موت والا معاملہ ہے وہ تو آ کر کے رہے گا، کیونکہ موت کا تو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بنایا ہوا ہے، چاہے مومن چاہے کافر. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، قال ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت دینا اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ الٹا جو ہے وہ بھاگنے میں بڑھ ہی گئے، یعنی وہ یعنی مجھ سے جو ہے وہ مجھے اوائڈ ہی کرتے رہے اور میری دعوت سے جو ہے وہ دور ہی بھاگتے رہے. تو میں نے جب کبھی بھی ان کو بلایا تو وہ اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھوسنے لگے اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹنے لگے تاکہ وہ مجھے کسی طریقے سے دیکھ نہ سکیں یا میں ان کو کسی طرح سے دیکھ نہ سکوں، یعنی کسی طرح سے چھپنے لگے وہ لوگ. اور انہوں نے غرور کیا، یعنی یہ جو انہوں نے سارے عمل کیے نا، یہ انہوں نے غرور کی وجہ سے کیے، تکبر کی وجہ سے کیے، کیونکہ وہ مجھے جو ہے وہ کسی قابل نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے رسول کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی بات مان کر کے زندگی گزاریں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے ہی زندگی گزارنا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد میں نے ان کو ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے یعنی کھلے عام بھی ان کو بلایا، یعنی باقاعدہ خطاب کر کے، ایک عوامی جلسے کے اندر گویا کہ خطاب کر کے ان کو بلایا، اور میں نے ان کو انڈیویجولی بھی بات سمجھانے کی کوشش کری، انفرادی ملاقاتوں کے اندر بھی بات سمجھانے کی کوشش کری. انی اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، यानी चोरे छुपे भी उनके साथ मिल मिल करके उनको दावत तबलीग करी, और मैंने उनको ये भी बताया कि अपने रब से तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांग लो। तो तुमने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं, चाहे बड़े गुनाह हों छोटे गुनाह हों, इन्नहु काना गफ्फारा, तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देगा। और सिर्फ तुम्हें आखरत के अंदर यानी गुनाहों को माफ़ नहीं कर देगा, बल्कि इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें नेमतें देगा। युरसिल समा अलैकुम मिद्रारा, तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा। वह युमदिदकुम बिअम्वालिहिम व बनीन, और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। वह यजअल लकुम जन्नात, और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा। वह यजअल लकुम अनहारा, और पूरा वाटर इरिगेशन सिस्टम तुम्हारे लिए बना देगा। मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह ताला के वक़ार को समझ नहीं रहे हो, अल्लाह ताला की बड़ाई तुम्हारे सामने कैसे नहीं वाजे हो रही है, जबकि अल्लाह ताला की आयात जो है वो खुल खुल करके अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तुम्हारे सामने रखी हुई है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे कैसे बनाया है। वक़द खलक़कुम अतवारा, कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने तुम्हें तख्लीक किया है। अलम तरव कैफ़ा खलक अल्लाह सबा समावात तबाका, क्या तुम देखती नहीं हो कि अल्लाह ताला ने जो 7 आसमान तबकात की शक्ल में बनाए हैं। वजअल अल क़मरा फ़ीहिन्न नूरन वजअल अश शम्स सिराजा, और ये जो चांद है अल्लाह ताला ने एक नूर की शक्ल में बनाया है, और सूरज को एक चिराग, एक जलते हुए चिराग की शक्ल में बनाया है। तो ये सारी बातें भी इन लोगों को पता थी, राइट। तो यहाँ पर एक बात वैसे हमने उस वक्त नहीं करी थी कि खलकाकुम अतवारा का मतलब क्या बयान किया है कि पहले नुतफा बनता है, फिर उसके बाद जो है वो यानी एक गोश्त का लोथड़ा, एक खून का लोथड़ा बनता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर गोश्त चढ़ता है, फिर उसके अंदर फिर हड्डियाँ बनती है। तो इस तरीके से जो इंसान की पैदाइश होती है। अब नूह अलैहिस्सलाम जिन लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये इंसान की पैदाइश देखी तो नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में तो अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती नहीं थी कि भाई माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश जो है वो कैसे कैसे हो रही है, कैसे कैसे उसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इन लोगों को क्यों कह रहे हैं कि अतवारन अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है, क्योंकि ये चीज़ें उनको नबियों ने पहले से बताई हुई थी कि ऐसे जो है ना वो इंसान पैदा होता है, सही है। तो जो चीज़ आपको किसी ऑथेंटिक ज़रिए से मालूम हो चुकी हो वो ऐसे ही होती है कि जैसे आप उस चीज़ को देख चुके हों, ठीक है, ऐसे ही होती है कि जैसे कि आप किसी चीज़ को देख चुके हों। हालांकि इन लोगों ने बच्चे की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल नहीं देखे थे, सही है। आज भी वैसे बहुत कम लोग ही देखते हैं, हर कोई तो नहीं देखता कि बच्चा कैसे पैदा होता है, सही है। वो तो बस एक उमूमी चीज़ होती है जो कि इंसान को पता होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो अगली आयत में फरमाया ना कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान कैसे बनाए, तो भाई 7 आसमान किसको नजर आते हैं, हमें नजर आते हैं 7 आसमान। ये 7 आसमान जो हैं ये तो एक रूहानी दुनिया की चीज़ है ना, जिसको आलम अमर भी कहते हैं, आलम अमर की चीज़ें हैं जो कि इंसान देख नहीं सकता। लेकिन आयत में कैसे फरमा रहे हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं, तो इन लोगों ने तो 7 आसमान को देखा ही नहीं था, ना हमने देखा है, ठीक है, किसी ने भी नहीं देखा इन 7 आसमानों को। तो फिर क्यों कह रहे हैं अलम तरव कैफा खलक अल्लाह सब असमावात इंतबाका, क्योंकि ये 7 आसमान वाली खबर भी इनको सच्चे लोगों ने दी हुई थी कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हुए, सही है। बात समझ में आ रही है कि नेक लोगों की जो बात, नेक लोगों की दी हुई खबर जो होती है ना वो ऐसे ही होती है कि जैसे आप उस चीज को देख रहे हो, सही है, हालांकि आपने उस चीज को देखा नहीं होता। जैसे बच्चे की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल किसी ने भी नहीं देखे, सही है ना, सवाए आजकल के दौर के कुछ डॉक्टर्स ने अगर उसके ऊपर रिसर्च करी होगी तो बस उन्होंने देखा, और तो किसी ने नहीं देखा। उसी तरीके से 7 आसमान एक्चुअली हैं क्या, ये तो किसी ने भी नहीं देखे, सही है। लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए क्या यानी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखे, सही है। तो खबर जो होती है ना, अम्बिया की दी हुई खबर, वो भी ऐसी चीज़ होती है कि जिसको के कहा जा सकता है कि क्या तुमने देखा नहीं इन चीज़ों को, क्या तुम्हें बताया नहीं गया इन सारी चीज़ों के बारे में, सही है। और इसके बाद जाल अल कमरा फीहिन्न नूरों, तो चले जी चांद तो जो है वो एक नूर की शक्ल में नजर भी आता है, तो चले ये इसको मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ लोगों ने देखी है। व वजाल शम्स सिराजा, और सूरज जो है वो एक चिराग की शक्ल में। तो सूरज के अंदर जाके किसी ने देखा देखा है भाई, सूरज बहुत गर्म होता है, सूरज जो है वो एक येलो बॉल ऑफ फायर यानी एक बॉल की तरह से नजर आता है, लेकिन सूरज के अंदर कभी हमने यानी यानी आग के शोले उठते हुए देखे हैं कभी सूरज के अंदर, राइट? ये तो आज के दौर के अंदर जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप्स हैं उनसे जो है वो सूरज के अंदर बाकायदा जलती हुई चीजें नजर आती हैं, वो भी शायद एक्चुअली वो तो एक यानी इमेजिनरी ड्राइंग्स होती हैं एक्चुअली वो, ठीक है? तो सूरज को भी सिराज के तौर पर किसी ने देखा तो नहीं है, सही है, लेकिन इसके बारे में भी इन लोगों को बताया हुआ था कि सूरज के अंदर जो है वो यानी जो 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 यानी चीजें जलती हैं सिराज की तरह से, है जैसे कि एक चिराग होता है उसके अंदर फ्यूल जल रहा होता है, ठीक है? तो ये सारी बातें नूह अलैहि सलाम ने इनसे करी कि अल्लाह ताला की जो मखलूकात है ना तो उनके अंदर तुम्हारे लिए निशानियां हैं, लेकिन फिर भी तुम बात नहीं मानते हो। फिर उसके बाद आयत नंबर 21 में नूह अलैहि सलाम ने फरमाया था कि नूह ने अपने रब से कहा कि इन्नहुम असौनी, इन्होंने मेरी नाफरमानी करी, व तबाऊ, और उन्होंने इत्तबा किसकी करी, मन लम यजिद हु मालुहू वो वलदुहू इल्ला खसारा, यानी इन्होंने ऐसे लोगों की इत्तबा करी कि जिनका माल और औलाद में कोई यानी ज्यादती नहीं होती थी। इसको जरा हम तर्जुमा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम खुलासा तफसीर से ना जहां पे लास्ट टाइम रोका था वहां से फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पेज नंबर 562 मारिफुल कुरान वॉल्यूम 8 से, ठीक है? तो बिल्कुल आखिरी की 5वीं लाइन है इस आयत की का तर्जुमा कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ए मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, मन असौनी, इन्होंने मेरी नाफरमानी करी, इन्नहुम असौनी, मेरा कहना नहीं माना, ठीक है? वत्तबाउ मन लम यजिदहु मालुहु वलदु वलदुहु इल्ला खसारा, और ऐसे शख्सों की पैरवी की, इत्तबा की, ठीक है? पैरवी की, इत्तबा का जो मतलब होता है ना वो होता है पीछे पीछे चलना, पैरवी करना, ठीक है? और जब कोई किसी के पीछे पीछे चलता है ना तो ऑटोमेटिकली वो उसकी यानी उसके हुक्मों पर भी अमल कर रहा होता है, ठीक है? तो कुरान के अंदर दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक होता है अताअत करना और दूसरा होता है पैरवी करना, ठीक है? अताअत करने के लिए अतीउल्लाह, अतीउर रसूल, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अतीउ, ठीक है, अताअत। और पैरवी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, इत्तेबा, इत्तेबा, सही है? तो अतात का मतलब ये होता है कि जो वो आपको हुक्म दे रहे हैं वो हुक्म आप मान लें, ठीक है? लेकिन पैरवी का मतलब ये होता है कि आप उनका हुक्म भी माने और उनके जैसे बनने की भी कोशिश करें, ठीक है? ये फर्क समझ में आता है? तो फर्क क्या है इन दोनों के दरमियान? कहीं कुरान के अंदर इत्तबिउ इत्तबिउल्लाह का हुक्म नहीं आया कि अल्लाह ताला की इत्तबा करो, कहीं आपने देखा ये हुक्म अल्लाह ताला की इत्तबा करो? ये हुक्म कहीं भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला की हम इत्तबा कर नहीं सकते, अल्लाह ताला खालिक है ना, मालिक है ना, तो हमें हमारे अंदर तो तखलीक करने की कोई सलाहियत ही नहीं है, हम तो तख्लीक कर ही नहीं सकते, तो हम अल्लाह ताला की कैसे इत्तबा कर सकते हैं, सही है? तो हम अल्लाह ताला के पीछे पीछे नहीं चल सकते, अल्लाह ताला की यानी पैरवी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्मों पर हमने अमल करना है, तो हमने अल्लाह ताला की अताअत करनी है, अल्लाह ताला की पैरवी नहीं करनी है। लेकिन पैरवी किन की करनी है? पैरवी करनी है फत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, ये एक अलग हुक्म है कुरान के अंदर के इत्तबा करो उन लोगों के रास्ते की के जो के अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले होते हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया ना, उनके रास्ते की पैरवी करो, ये कुरान के अंदर हुक्म है। सही है, तो पैरवी जो है वो इंसानों की जाती है, ठीक है, इंसानों की अतात भी करनी होती है और इंसानों की पैरवी भी करनी होती है। सही है, लेकिन अल्लाह ताला की पैरवी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की सिर्फ अतात करनी होती है। सही है, तो पैरवी के अंदर ना, पैरवी करना, इत्तेबा करना, इसके अंदर अताअत भी शामिल हो जाती है। ये बात क्लियर है कि इत्तेबा के अंदर अताअत भी शामिल हो जाती है और उनको कॉपी करना भी शामिल हो जाता है। सही है, तो इन लोगों ने किसकी अता इसकी किसकी पैरवी करी? इन लोगों ने उन शख्सों की पैरवी करी कि जिनके माल और औलाद ने इनको नुकसान ही ज्यादा पहुंचाया, यानी ये वो लोग थे कि जो कि अल्लाह ताला की अतात नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल की अतात नहीं करते थे। तो इस वजह से जो अल्लाह ताला ने इनको नेमतें दी थी माल और औलाद की शक्ल में, तो अब ये नेमतें जो है ना, इनका इन्होंने शुक्र अदा नहीं किया, क्योंकि जाहिर है अगर अल्लाह की अतात करते तब शुक्र अदा करते ना, तो इन्होंने तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। तो इस वजह से ये नेमतें इनके लिए बायस अजाब बन गई। ठीक है, क्योंकि दुनिया की जो नेमतें होती हैं वो तो हमारे लिए एक आजमाइश है ना, कि हम उनका शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम करेंगे तो वो नेमतें हमारे लिए जन्नत की नेमतें पाने का सबब बन जाएंगी, और अगर हम उनका शुक्र अदा नहीं करेंगे, यानी उन पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो यही नेमतें जो हैं वो हमारे लिए नुकसान का सबब बन जाएंगी। सही है, तो इन लोगों को नुकसान होता था अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के नेमतों पर। तो मुराद इन शख्सों से रऊसा हैं, जिनका अवाम इत्तबा किया करते हैं। रऊसा किनको कहते हैं? सरदारों को। ठीक है, रऊस, रऊस रास की जमा है, पिछली क्लास के अंदर बात हुई थी ना रास की, याद है किसी को रास की क्या बात हुई थी? रास क्या बात हुई थी रास के मुताल्लिक पिछली क्लास के अंदर? जी आपसे पूछ रहा हूं, रास के मुताल्लिक क्या बात हुई थी? याद है, हुब्बुद दुनिया। जी, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ले खतियतन, कि दुनिया की मोहब्बत हर बीमारी की जड़ है। सही है, तो जड़ का लफ्ज़ यानी उसके लिए अरबी में रास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने बताया था कि रास का मतलब सर भी होता है। ठीक है, तो रास की जमा जो है वो रुऊस होता है, ठीक है, यानी हेड्स। तो इसी वजह से जो सरदार होते हैं ना, उर्दू के अंदर भी जो लफ्ज आया सरदार, ठीक है, तो सरदार उन लोगों को कहते हैं जो कि किसी यानी किसी कबीले के या इंसानों के किसी ग्रोह के जो हेड्स होते हैं ना, उनको सरदार कहते हैं। तो अरबी में ना उनको रुऊस कहते हैं। ठीक है, तो रास का मतलब सर भी होता है और रास का मतलब जड़ भी होता है, और इसकी जमा जो होती है वो रुऊस होती है। तो इन शख्सों से मुराद जो है ना वो रुऊसा हैं, यानी उन लोगों के सरदार हैं कि जिनका अवाम इत्तबा किया करते थे, और माल और औलाद का इन रुऊसा को नुकसान पहुंचाना बेईमानी है कि माल और औलाद सरकशी का सबब बन गए। ठीक है, कि माल और औलाद जो है ना वो उनकी यानी जब इन्होंने रसूल की अतात इख्तियार नहीं करी बल्कि अपने रऊसा की अतात इख्तियार करी, तो इसका लाजमी नतीजा क्या होता है कि अब इनके अंदर ना तकब्बुर पैदा हुआ उस माल और औलाद की वजह से, जो कि इनके लिए अल्लाह ताला की नेमतें थी, लेकिन जब नेमत का शुक्र अदा नहीं करते ना, रसूल की बात मानकर नेमत का शुक्र अदा किया जाता है। अगर हम रसूल की बात नहीं मानेंगे तो फिर नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत क्लियर है, और इस बात को आप समझ लें कि नेमत का शुक्र जो है वो अताअत की शक्ल में किया जाता है, अताअत की शक्ल में, ठीक है। फकत जुबान से चंद कलमे कह देना, लेकिन जिसकी बात माननी चाहिए थी उसकी बात नहीं मानना, ये शुक्र नहीं है। सही है, जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, उर्दू में हम कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अरबी में हम कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, लेकिन हमने बात नहीं मानी, हमने अतात नहीं करी। क्या मतलब? कि हमने फराइज पूरे नहीं किए, ठीक है। तो ये जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देना या शुक्रुल्लाह कह देना, इससे नेमत का शुक्र अदा नहीं हुआ। सही है, नेमत का शुक्र अदा करने के लिए अतात इख्तियार करनी ये लाजमी है। अगर अतात इख्तियार नहीं करेंगे ना, तो जुबान से चंद कलिमात अदा कर देने से ये नेमत का शुक्र अदा नहीं होता। तो जब नेमत का शुक्र अदा नहीं होता, तो फिर वो नेमत रूहानी बीमारियों का सबब बन जाती है। वो जो अल्लाह की नेमत दी हुई है ना अल्लाह ने हमें, तो वो हमारे अंदर रूहानी बीमारियां पैदा होने का सबब बन जाती है। जैसे इन लोगों के अंदर तकब्बुर वाली रूहानी बीमारी पैदा होने का सबब क्या बनी? इनकी नेमतें बनी, जो अल्लाह ताला ने इनको नेमतें दी थी, माल और औलाद, ठीक है। तो रूहानी बीमारी ऐसे पैदा होती है। जब हम अतात नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर रूहानी बीमारी पैदा हो जाती है। एक बात ये हो गई इसके अंदर, और दूसरी बात ये हो गई कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि इन्होंने अपने सरदारों की बात मानी, ठीक है। तो नूह अलैहिस्सलाम क्या है? नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, सही है। ये बात तो आप फौरन आपके ज़हन में आया होगा कि हाँ, नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं। लेकिन नबी क्या होता है? नबी इंसान नहीं होता क्या? नबी इंसान ही होता है ना, सही है। नबी ना तो जिन होता है, नबी ना तो फरिश्ता होता है, नबी ना तो खुदा होता है, बल्कि नबी क्या होता है? नबी इंसान होता है, ठीक है। और ये रूस जो इनके जो सरदार थे जिनकी इन्होंने बात मानी, ये क्या थे? ये भी इंसान थे, ये भी कोई जिन तो नहीं थे, ये भी कोई फरिश्ते, और ये भी कोई खुदा तो नहीं थे, ये भी इंसान थे, ठीक है। तो इन लोगों ने नबी को छोड़ करके किसकी बात मानी? इंसानों की बात मानी, सही है, यानी दूसरे इंसानों की बात मानी, नबी वाले इंसान की बात नहीं मानी, बल्कि जो गैर नबी इंसान थे ना, उनकी बात मानी, सही है। तो अब इसमें एक बात याद रखें कि नबी की मुखालफत कौन लोग करते हैं? नबी की मुखालफत इंसान ही करते हैं, ठीक है। तो ये जो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, इस कौम के अंदर हर कौम की तरह दो तबके होते थे। एक तबका कहलाता था सरदारों का तबका, और दूसरा तबका कहलाता था अवामुन नास का तबका, कॉमन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम किन लोगों की बात कर रहे हैं कि ये जो अवामुन नास थे ना मेरी कौम के, इन अवामुन नास को मेरी बात माननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी, बल्कि मुझे छोड़ करके इन्होंने अपने सरदारों की बात मानी, ठीक है। और वो सरदार जिन्होंने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया, उन सरदारों की बात मानी। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी एक आध सरदार जो है वो नबी की बात मान करके मुसलमान हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन सरदारों की तो बात नहीं हो रही जो मुसलमान हो गए, बल्कि उन सरदारों की बात हो रही है कि जिन्होंने नबी की मुखालफत करी, ठीक है। तो नबी की मुखालफत जो है ना, वो असल में कौन करते हैं? वो जो उस इलाके के लोगों के जो पहले से सरदार बने हुए होते हैं ना, वही सरदार जो होते हैं वो नबी की मुखालफत करते हैं, ठीक है, नबी की बात मानने से इनकार करते हैं। और जो अवामुन नास होते हैं ना, अवामुन नास जो हैं वो ये करते हैं कि नबी की बात मानने की बजाय वो इन सरदारों की बात मानते हैं। उनको ये चाहिए था कि वो नबी की बात मानते, वो सरदारों की बात ना माने, सही है। लेकिन अवाम नास ये गलती करते हैं कि वो सरदारों की बात मानते हैं, नबी की बात नहीं मानते, सही है। अब ये फर्क क्या है सरदारों में और अवाम नास के दरमियान, फर्क क्या होता है? माल दौलत का फर्क होता है कि सरदारों के पास माल और दौलत होता है और अवाम नास के पास माल और दौलत नहीं होता, या कोई और भी फर्क होता है? कोई बता सकता है कि ये जो सरदार होते हैं और अवाम नास होते हैं, इन दोनों में किन किन चीजों में का फर्क होता है? माल और दौलत का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि सरदारों के पास माल और दौलत होता है, होती है, और अवाम नास के पास माल और दौलत नहीं होती। और क्या फर्क होता है? राजा प्रजा, ये क्या चीज है मुझे मालूम नहीं है, हिंदी जुबान का। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, सरदारों के पास इल्म होता है और अवामुन नास के पास इल्म नहीं होता, ठीक है। ये बहुत बुनियादी फर्क होता है, इल्म का होना और इल्म का ना होना। असल में जो जो यानी जो चीज तफरीक करती है ना इंसानों में, यानी जो इंसानों में रुतबा बंदी का सबब बनती है, वो असल में जो है ना वो इल्म होता है, ठीक है, जो कि एक बुरी बात नहीं है। इल्म का होना कोई बुरी बात नहीं है, इल्म का होना बहुत अच्छी बात है, बल्कि सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो इस वजह से जी ये जो रुतबा बंदी होती है ना इंसानों के अंदर, वो असल में इल्म की बुनियाद पर होती है, सही है। जिसके पास ज्यादा इल्म होता है ना, वो हमेशा वो क्या कहते हैं उसको, इमाम बनता है। ज्यादा इल्म वाला शख्स जो होता है ना, वो हमेशा इमाम बनता है, और जिसके पास इल्म कम होता है ना, वो हमेशा मुक्तदी बनता है, ठीक है, यानी फॉलोअर। ओके, अच्छा, अब जिसके पास ज्यादा इल्म होता है ना, तो अब वो उस इल्म की बुनियाद पर अब वो बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है, इल्म की बुनियाद पर, अपने इल्म को इस्तेमाल करके, सही है, इल्म को इस्तेमाल करके वो इज्जत कमा सकता है, ठीक है, इज्जत हासिल कर सकता है इल्म की बुनियाद पर। ओके, इल्म की बुनियाद पर वो हुकूमत हासिल कर सकता है, राइट, हुकूमत, ये भी इल्म की बुनियाद पर वो हासिल कर सकता है, ठीक है, और इल्म की बुनियाद पर ही वो माल और दौलत भी हासिल कर सकता है, ठीक है। क्या चीजें हासिल कर सकता है इल्म की बुनियाद पर? इज्जत, नंबर दो माल और दौलत, या नंबर दो हुकूमत, और नंबर तीन माल और दौलत, सही है। तो इल्म को फिर आप इस्तेमाल करके ये तीनों चीजें हासिल कर सकते हैं, सही है। अब फर्क ये होता है कि जो नेक लोग होते हैं, यानी अल्लाह की अताअत करने वाले, नबी की अताअत करने वाले, ये लोग जो है ना, इल्म की बुनियाद पर इन तीन चीजों में से दो चीजें हासिल करते हैं, तीसरी हासिल नहीं करते, सही है। दो चीजें कौन सी होती हैं? इन तीन में से दो चीजें जो बुरे लोग इल्म की बुनियाद पर हासिल कर लेते हैं, एक होती है हुकूमत और दूसरी होती है माल दौलत। ओके, एक होती है हुकूमत और दूसरी होती है माल दौलत। ये लोग जो है ना, इज्जत हासिल नहीं कर सकते इल्म की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर ना ये इज्जत हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कि इन्होंने अपने इल्म पर अमल नहीं किया। इल्म पर अमल क्या होता है? इल्म पर अमल ये होता है कि अल्लाह ताला की अताअत करें, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इल्म वाली नेमत जिसको अल्लाह ने दी होती है, जब वो इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, सही है। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था कि शुक्र का मतलब क्या होता है, जरा आप अगर उसको रिपीट कर दें, कि शुक्र का मतलब क्या होता है। जी, शुक्र का हकीकी मतलब क्या बताया था अभी आपको? अतात। ठीक है, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, शुक्रुलिल्लाह पढ़ना, ये नहीं होता फकत, यानी फकत ये शुक्र का मतलब नहीं होता, बल्कि शुक्र का असल मतलब होता है अल्लाह ताला की अतात करना। जिसने आपको ये नेमत दी है उसकी अतात करना, ये होता है शुक्र। तो जो इल्म वाले होते हैं, अगर ये अपने इल्म पर शुक्र अदा करें अल्लाह का, यानी अल्लाह ताला की अतात करें, तो इनको क्या मिलता है? इनको इज्जत मिलती है, इज्जत। ठीक है, ये गारंटीड होती है कि इनको जरूर बिल जरूर इज्जत मिले। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको हुकूमत भी मिले, और जरूरी नहीं है कि इनको दौलत भी मिले। ओके, इज्जत मिलना तो लाजमी है, हुकूमत मिलना और दौलत मिलना लाजमी नहीं है। मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिलती। ठीक है, शुक्र करने वालों को इज्जत मिलना लाजमी है, लेकिन हुकूमत मिलना और दौलत मिलना ये लाजमी नहीं है। ओके, लेकिन जो लोग अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते इस इल्म वाली नेमत पर, तो उनको क्या चीज मिलती है? उन लोगों को जो है ना, वो इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, इज्जत नहीं मिलती उन लोगों को। ओके, लेकिन उन लोगों को अक्सर औकात दौलत मिल जाती है, दौलत मिल जाती है। ओके, अक्सर औकात, हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर औकात उनको दौलत मिल जाती है, और कभी कभी उनको हुकूमत भी मिल जाती है। इल्म वालों को जो शुक्र नहीं अदा करते, उनको दौलत अक्सर मिल जाती है और हुकूमत भी कभी कभार मिल जाती है, लेकिन इज्जत कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, ये कौन लोग हैं? ये इल्म वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ने इल्म वाली नेमत दी है। ओके, तो अगर उनको हुकूमत मिल जाती है ना, तो ये इल्म वाले लोग जो हैं फिर कौम के सरदार बन जाते हैं, क्योंकि कौम की सरदारी का मतलब ये होता है कि जिनके पास कौम की हुकूमत हो। ठीक है, इज्जत नहीं होती इनकी, लेकिन हुकूमत इनको मिल जाती है। ओके, तो अब ये कौम के सरदार बन जाते हैं। अब जो अवामुन नास होते हैं ना, जिनके पास, अवामुन नास कौन लोग होते हैं? जिनके पास इल्म की नेमत नहीं होती है, इल्म की नेमत नहीं होती है, ये लोग जो होते हैं ना अवामुन नास होते हैं। अवामुन नास की तारीफ ही ये है, यानी डेफिनेशन ये है अवामुन नास की। अवाम कौन लोग होते हैं? अवाम वो लोग होते हैं कि जिनके पास इल्म की दौलत, इल्म की नेमत नहीं होती है। ये तारीफ अगर आप चाहिए तो आप सारी चीजें ही लिखें, ठीक है, लेकिन अगर कम से कम ये वाली बात लिखें कि अवामुन नास की तारीफ ये होती है कि वो लोग जिनके पास इल्म की नेमत नहीं होती है। सही है, तो इस वजह से अवामुन नास जो होते हैं ना, चूंकि इनके पास इल्म की नेमत नहीं होती है, अब ये रसूल जो होता है ना, अल्लाह ताला किसी एक शख्स को रसूल बना देते हैं, ठीक है, तो ये रसूल की का जो दावा होता है, रसूल दावा करता है ना आकर के कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरे ऊपर वही आती है। ठीक है, तो ये ना उस दावे को पहचान नहीं सकते कि क्या ये सच्चा दावा कर रहा है या ये झूठा दावा कर रहा है। अवामुन नास इस दावे को नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो लेकिन जो इनके इल्म वाले लोग होते हैं, ठीक है, इन यानी इस कौम में जो इल्म वाले लोग होते हैं ना, उनके पास चूंकि इल्म होता है ना, तो वो इस रसूल की के दावे को पहचान लेते हैं, अपने इल्म की बुनियाद पर पहचान लेते हैं कि ये रसूल जो है ना, वो सच कह रहा है। ठीक है, ये रसूल सच कह रहा है, उनका इल्म जो है ना, वो उनको कंफर्म करके बता देता है, यानी इनके इल्म की बुनियाद पर इनको कंफर्म पता लग जाता है कि रसूल सच कह रहा है। ठीक है, लेकिन अवाम नास को ये पता नहीं लगता कि ये रसूल सच कह रहा है कि ये झूठ कह रहा है, ठीक है ना, उनके पास तो इल्म नहीं होता ना। ठीक है, तो अवाम नास जो है ना फिर रसूल की बात क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो अपने, अच्छा वो सरदारों की बात क्यों मानते हैं, रसूल की बात क्यों नहीं मानते? वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि जो सरदार होते हैं ना, इन सरदारों के पास हुकूमत होती है और इन सरदारों के पास दौलत भी होती है। ठीक है, क्योंकि जिसके पास हुकूमत होगी ना, फिर वो ऑटोमेटिकली दौलत हासिल कर लेगा अपनी हुकूमत के जोर पर। तो इन सरदारों के पास जो है ना वो हुकूमत भी होती है, क्योंकि जब भी तो ये सरदार होते हैं, इसलिए कि इनके पास हुकूमत है, और जब हुकूमत है तो इनके पास दौलत भी है। ठीक है, तो अवाम नास जो है ना ये नबी की बात को छोड़ करके सरदारों की बात क्यों मानते हैं, इस वजह से नहीं कि इनको कोई कंफर्म पता हो कि पता होता है कि नबी जो है वो झूठ बोल रहा है, नहीं, बल्कि इनको सरदारों के पास जो हुकूमत और दौलत होती है ना वो अच्छी लगती है, नबी के पास हुकूमत और दौलत नहीं होती है, कम से कम शुरू के दिनों में नबी के पास हुकूमत और दौलत नहीं होती है, जबकि सरदारों के पास हुकूमत और दौलत होती है। तो इस वजह से ये जो अवामुन नास है ना, ये सरदारों की अतात क्यों करते हैं, उनकी हुकूमत और दौलत की वजह से। सही है, अब ये क्यों करते हैं सरदारों की अतात उनकी हुकूमत और दौलत की वजह से, इसकी रीजन अगर आप में से कोई बताए क्यों करते हैं ये? नबी के पास हुकूमत और दौलत नहीं होती, नबी की बात नहीं मानते, ठीक है, सरदार के पास हुकूमत और दौलत होती है तो इस वजह से सरदार की बात मान लेते हैं। तो ये जो गलत काम करते हैं, तो इसका सबब क्या चीज बनती है, इनकी इस गलती की यानी के पीछे क्या वजह होती है? जी, कोई बताएगा इसका इसका जवाब? ला इल्मी। हाँ, ये भी आपने वैसे एक गलत जवाब तो नहीं दिया, सही जवाब दिया है कि इनकी ला इल्मी होती है कि जिसकी वजह से ये, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना कि जो नबी की बात मान भी लेते हैं, कुछ अवाम तो ऐसे भी होते हैं जो नबी की बात मान लेते हैं, हालांकि उन अवाम के पास भी इल्म नहीं होता, क्योंकि अवाम तो होते ही वो हैं जिनके पास इल्म नहीं होता, सही है ना, लेकिन कुछ अवाम जो है वो नबी की बात मान भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर अवाम नबी की बात नहीं मानते बल्कि सरदारों की बात मानते हैं। तो ला इल्मी अगर वजह होती नबी की बात ना मानने की, तो फिर कोई भी ना मानता, वो हिदायत याफ्ता नहीं है। नहीं, ये तो जवाब सही नहीं है, मतलब वो तो आप फिर वो तकदीर की बातें करना शुरू हो गई ना कि तकदीर के अंदर उनके लिए हिदायत नहीं लिखी हुई होती, इस वजह से नहीं मानते। तो भाई ये तो फिर हमारी सारी डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है कोई, वो तो फिर आप तकदीर का मामला तो बिल्कुल ही अलग है ना, उसके तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे ना। तो सबब बताए ना, ला इल्मी वजह नहीं बनती, क्योंकि अगर ला इल्मी वजह होती तो फिर अवामुन नास में से कोई भी नबी की बात नहीं मानता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, कुछ अवामुन नास नबी की बात मान भी लेते हैं हालांकि वो लाइल्म होते हैं। ज्यादातर अवामुन नास नबी की बात नहीं मानते बल्कि सरदारों की बात मानते हैं, वो क्यों, उसकी वजह क्या बनती है? ला इल्मी एक नुक्स है ना, तो आपने अच्छा जवाब दिया था कि ला इल्मी जो है वो उनकी सबब बनती है, लेकिन सही जवाब नहीं था ये, अच्छा जवाब था लेकिन सही जवाब नहीं था। ठीक है, तो ये एक नुक्स है ना किसी के अंदर इल्म की कमी होना, तो इसी तरीके से ना जो गलत काम करते हैं ना हम, तो उसका रीजन जो है ना वो कोई नुक्स बनता है हमारे अंदर। ठीक है, तो वो नुक्स कौन सा वाला नुक्स है? दे आर कंडीशन टू फॉलो एंड ट्रस्ट द लीडर्स लाइक देयर फोर फादर्स। कंडीशन वाली बात भी सही नहीं है, क्योंकि यानी सारी कंडीशन अगर होते हैं तो फिर वो कुछ लोग तो फिर कर लेते हैं ना, नबी की बात मान लेते हैं ना। जी, माल की मोहब्बत, वो अपने शिर्क नहीं छोड़ते। वो क्यों नहीं शिर्क छोड़ते, यही तो बात हो रही है कि वो क्यों शिर्क नहीं छोड़ते। माल की मोहब्बत, ये अब ये जो आपका जवाब है ना, ये थोड़ा सा करीब है उस जवाब के, लेकिन माल की मोहब्बत जो है क्या ये कंप्लीट जवाब है या इसमें थोड़ी सी भी नुक्स है अभी? इसी को अगर आप कंप्लीट कर दें पिछली क्लास की डिस्कशन याद करते हुए, असल मसला क्या होता है? मुश्किल मुश्किल अल्फाज इतने नहीं बोले, हुब्बुल माल और हुब्बुल जाह, आप ही ने सही जवाब भी तो दिया था पिछली क्लास में। हाँ, ये है ना असल असल मसला ना। पिछली क्लास में क्या समझाया था कि सारी बीमारियों की जो एक जड़ है वो दुनिया की मोहब्बत है, ठीक है? हुब्बुल माल, हुब्बुल जाह, ये सारी चीजें तो दुनिया की मोहब्बत की यानी शाखें हैं, ठीक है? तो असल में तो दुनिया की मोहब्बत होती है ना। तो जो अवामुन नास नबी की बात मान लेते हैं ना, उनके अंदर ये हुब्बु दुनिया कम होती है, वो उस हुब्बु दुनिया के ऊपर काबू पा लेते हैं तो नबी की बात मान लेते हैं। लेकिन जिनके अंदर हुब्बु दुनिया बहुत शदीद होती है ना, तो ये लोग जो है वो सरदारों की बात मानते हैं, इसलिए कि सरदारों के पास दुनिया होती है, उनके पास जाह भी होती है। जाह कहते हैं हुकूमत को, तो सरदारों के पास हुकूमत भी होती है, और ये लोग हुकूमत के मुतमन्नी होते हैं। इनके भी दिल के अंदर हर वक्त ये ख्वाहिश रहती है कि किसी तरह हमें भी हुकूमत मिल जाए, अगरचे इनके पास होती नहीं है लेकिन दिल में चाहत होती है हुकूमत की। और जो सरदार होते हैं उनके पास दौलत भी होती है। तो इन अवामुन नास के पास दौलत अगरचे नहीं होती, लेकिन ये हमेशा इस ख्वाब में रहते हैं कि काश के हमारे पास भी दौलत होती, ठीक है? तो इस वजह से ना इनके अंदर हुब्बु दुनिया का जो मर्ज होता है ना, इस हुब्बु दुनिया की वजह से ये नबी को छोड़ करके सरदार की बात माना करते हैं, लाइलमी की वजह पर नहीं बल्कि दुनिया की मोहब्बत की वजह से। सही है? तो नबी का यानी नबी के जो अपोजिंग फोर्स होती है ना, वो अपोजिंग फोर्स मुआशरे के अंदर ये सरदार होते हैं, जिन सरदारों के पास हुकूमत होती है और दौलत होती है। और अवामुन नास जो होते हैं वो उनके पास चॉइस होती है कि वो नबी की बात को फॉलो करें या वो सरदारों की बात बात को फॉलो करें। अगर अवामुन नास के अंदर दुनिया की मोहब्बत बहुत शदीद होगी तो वो सरदारों की बात मानेंगे, और जिनके अंदर दुनिया की मोहब्बत जो है वो होगी लेकिन कम होगी तो वो जो है नबी की बात मानेंगे, ठीक है? तो यहां पर भी यही हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भी वही हुआ था जो कि आज होता है, अगरचे के उनका जमाना आज से शायद 450 या 4500 या 5000 साल पहले का जमाना था ना, लेकिन बिल्कुल उसूल वही रहते हैं, राइट? प्रिंसिपल्स डोंट चेंज, सिर्फ शक्लें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, ये रूल्स नहीं बदलते, ये रूल्स वही चल रहे हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के साथ हुए थे, वही मसला जो है वो हमारे साथ भी हो रहा होता है। तो फिर फरमाया कि और इन्होंने जिनका इत्तबा किया है वो ऐसे हैं कि जिन्होंने हक के मिटाने में बड़ी बड़ी तदबीरें की हैं, यानी ये जो जो सरदार लोग हैं ना, फिर ये बैठ करके नबी के खिलाफ तदबीरें भी करते हैं। तो इन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें करी हैं, और जिन्होंने अपने ताबईन से ये कहा कि तुम अपने माबूदों को हरगिज मत छोड़ना, ठीक है? यानी जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, इन सरदारों ने उनसे कहा कि इन माबूदों को हरगिज ना छोड़ना, और ना बिलखुसूस वद को और सुवा को और यगूस को और यऊब को और नसर को छोड़ना, ठीक है? कि इन इन माबूदों को तो तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये माबूद क्या थे? ये सिर्फ बुत थे, ठीक है, जिनके कि इन्होंने ये नाम रखे हुए थे। असल में आगे शायद इसकी तफसीलात भी रही है कि असल में ना इनके जमाने में कुछ नेक लोग हुआ करते थे इनके इनकी कौम में, जो कि यानी बहुत पहले जिनका इंतकाल हो चुका था, ठीक है? उन लोगों के नाम थे ये वध, एक का नाम था सुवा, एक का नाम यगूस, एक का नाम यऊक और एक का नाम नसर, ठीक है? जब इनका इंतकाल हो गया ना, तो इन नेकों से लोगों को बहुत मोहब्बत थी, जैसे कि होनी भी चाहिए, राइट? नेक लोगों से मोहब्बत करना ये दीन का हिस्सा है। नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअलना हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका, कि ऐ अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूं और जिन लोगों ने आपसे मोहब्बत करी मैं उनकी भी मोहब्बत मांगता हूं। यानी नेकों से मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, राइट? तो ये लोग भी जो है वो इन नेकों से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब नेक लोगों का इंतकाल हो गया ना, तो उसके बाद उन लोगों ने ये आपस में बात करी कि भाई ये नेक लोग हमारी दुनिया से चले गए, अब हम यानी उनको देख तो नहीं सकते क्योंकि अब तो वो कब्र की मिट्टी बन गए, तो अब हम ना उनको कैसे देखा करेंगे, हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे क्या करेंगे। तो आपस में इन्होंने मशवरा करके उनके बुत बना लिए, ठीक है, बुत बाकायदा आइडल्स, सही है। उस जमाने में बुत बनाना हराम भी नहीं था, राइट? ये तमासील, तस्वीरें, ये सारी चीजें जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के शरीयत के अंदर हराम हुई हैं, उनसे पहले ये हराम नहीं थी। तो वो नेक लोग ही हुआ करते थे जिन्होंने कि ये बुत बनाए, लेकिन इस बुत के बनाने के अंदर जो है ना, या तो शैतान ने इनको कुछ कुछ अमल दखल किया इसके इनके इस काम के अंदर, कि शैतान ने उनको ये मशवरा दिया कि बुत बना लो, ठीक है, क्योंकि शैतान के इल्म के अंदर ये था कि बाद में जा करके मैं इनको बुत परस्ती पे लेकर के आऊंगा, अभी तो ये बुत परस्ती नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो ये तौहीद पर है, अभी तो ये नेक है, लेकिन बाद में ना इन बुतों की मैं इनसे पूजा करवाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो शैतान का बहुत लंबा यह मंसूबा था। तो इन लोगों ने जो बुत बनाया ना, इन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं करी, लेकिन जब इनका इंतकाल हो गया और इनकी औलादें बड़ी हुई, तो उन औलादों ने भी इनकी इन बुतों की परस्तिश नहीं करी, बल्कि इन्होंने थोड़ा सा और अमल करना शुरू कर दिया कि इन बुतों को देख करके जो खुश हुआ करते थे ना कि हाँ ये हमारे नेक लोगों के बुत हैं, जैसे आजकल तस्वीरें और इस तरह के स्टैचूज बने हुए होते हैं ना, भाई एब्राहम लिंकन का स्टैचू बनाया हुआ है कि भाई एब्राहम लिंकन साहब ने अमेरिका को जो है ना वो एस्टैब्लिश किया था, राइट? वो फाउंडिंग फादर था अमेरिका का, तो एब्राहम लिंकन का स्टैचू बनाया हुआ है कहीं पे, जो है वो यानी रूस के किसी का स्टैचू बनाया हुआ है कहीं, चीन का जो क्या नाम था उसका, चुइन लाई नाम था या कौन सा था, उसके स्टैचूज बने हुए होते हैं, जगह जगह लोगों के स्टैचूज बने हुए होते हैं। तो वो स्टैचूज की कोई परस्तिश नहीं कर रहा होता, लेकिन वो क्यों बनाए हुए हैं कि भाई ये हमारे लीडर्स थे, ये हमारे नेक लोग थे, तो हम इनको इनके स्टैचूज के जरिए से इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो पहली जनरेशन ने तो याद रखने की नीयत से स्टैचूज बनाए थे, लेकिन दूसरी जनरेशन ने जो है ना वो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये करना शुरू कर दिया कि वो तकद्दस के तौर पर उन स्टैचूज को हाथ भी लगाया करते थे, ठीक है, टच किया करते थे, जैसे हम पैर चूमते हैं ना, कुछ लोग जो है वो, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने माँ बाप की मोहब्बत में उनके पैर चूमते हैं या पैरों को हाथ लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी मोहब्बत में किया जा रहा होता है, ये कोई परस्तिश में नहीं किया जा रहा होता, मोहब्बत में किया जा रहा होता है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने इन बुतों को भी जो है वो हाथ से जो है ना वो यानी इनके तकद्दस के लिए हाथ लगाना शुरू किया। इसके बाद वाली जनरेशन ने हाथ लगाने के साथ साथ कुछ सर भी झुकाना शुरू कर दिया इन बुतों के सामने, और ऐसे होते होते बिलाखिर ये सजदे की शक्ल इख्तियार कर गया, इन बुतों के सामने सजदा करना, ठीक है। तो अब जो है ना ये बुत जो है वो इनके खुदा यानी इनके खुदा बनना शुरू हो गए, यानी इन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि ये बुत ही असल खुदा है, और वो जो जो बनाने वाला है ना वो जो है वो एक यानी एक अलग से बैठा हुआ बस एक 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 यानी सबसे बड़ा तो वही है, अल्लाह ताला ही है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने ना अपनी खुदाई ताकतें जो हैं, अपनी अथॉरिटीज जो है ना वो इन बुतों को भी दे दी हैं, ठीक है, इनको भी ट्रांसफर कर दिए या डेलीगेट कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये बाकायदा फिर माबूदों की शक्ल इख्तियार कर गए, सही है। तो ये लोग जो थे ना, जो सरदार लोग थे, ये सरदार लोग जो हैं वो दरअसल ये गलत गलत नजरियात जो है ना वो अपने अवामुन्नास में प्रमोट किया करते हैं, ठीक है, कि इन बुतों को जो है तुम सरदार मानो, सॉरी इन बुतों को जो है तुम माबूद मानो, यही है तुम्हारे माबूद, इबादत करने के लायक जो है वो ये बुत ही है, ठीक है। सरदारों को ये बात पता होती है कि ये बुत असल में माबूद नहीं है, असल में ये खुदा नहीं है, तो फिर ये अवामुन्नास को क्यों कहते हैं कि ये खुदा है। अवाम उन्नास यानी सरदारों को क्या क्या मिल रहा होता है कि अगर अवाम उन्नास आकर के इन बुतों की परस्तिश करेंगे तो भाई सरदारों को क्या मिल रहा है इससे? आप कोई अगर इसका जवाब दें तो फिर इसके ऊपर क्लास खत्म कर देते हैं, टाइम हो चुका है हमारा। तो याजिद आपको ये बता रहा है कि सरदारों को तो पता होता है कि ये बुत जो है ना, ये सिर्फ पत्थर के और मिट्टी के बनी हुई चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकती, ये कोई खुदा वुदा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अवाम उन्नास को झूठ बोलते हैं कि ये तुम्हारे खुदा हैं, तुम इनकी इबादत किया करो। तो सरदारों को क्या फायदा हो रहा होता है अवाम उन्नास को इन बुतों की इबादत करवा के, क्या फायदा हो रहा होता है? क्यों कहते हैं वो इस तरीके से? जी कोई बताएगा? फॉर पावर क्यों? इन बुतों की इबादत होगी तो अब जो सरदार हैं उनको पावर मिलेगी, कैसे? अच्छा चलें, टाइम चूंकि ख़त्म हो चुका है तो यार जिसको जी खुद ही जवाब दे करके फिर क्लास ख़त्म करता है। ये जो हाँ दौलत कैसे मिल रही होती है उनको, वही तो आपसे तफसील पूछ रहे थे ना थोड़ी सी। तो ये जो सरदार होते हैं ना, इनको दो फायदे हो रहे होते हैं असल में, ठीक है। दो दो शक्लों में फायदे हो रहे होते हैं। एक शक्ल का फायदा ये होता है कि ये अवाम उन्नास को कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे माबूद हैं, तुम इनकी परस्तिश करो और इनको खुश करने के लिए लाजमी है कि तुम हमारी बात मानो। सरदारों सरदार कहते हैं कि तुम हमारी बात मानो, ठीक है। क्यों? इसलिए कि हम जो है ना वो इन बुतों के सबसे ज्यादा करीब हैं, इन बुतों के सबसे ज्यादा करीब हैं हम। इनसे जो है ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। हम इनके मुकर्रब हैं, तो इन बुतों को खुश करने के लिए जरूरी है कि तुम हमारी बात मानो। सही है, तुम हमारी अतात करो, ओके। और हमारी अतात फिर वो कहते हैं कि हमारी अतात कैसे करो कि तुम जो है ना वो यानी हमें अपना सरदार बना करके रखो, हमें अपना लीडर बना करके रखो, ठीक है, हमारी सारी बातें माना करो। और दूसरी चीज ये है कि तुम इन बुतों पर चढ़ावे चढ़ाया करो। चढ़ावे कहते हैं ना, ठीक है। चढ़ावे क्या होते हैं कि हदिये हदिये देना और इनके ऊपर कुर्बानियां करना, ठीक है। तो तुम इन बुतों के नाम पर कुर्बानियां किया करो और इनको आकर के जो है ना वो इनके ऊपर सोने की चादरें वगैरह चढ़ाया करो, ठीक है। तो ये सोने की चादरें जो चढ़ाओगे तो इनसे ये बुत खुश हुआ करेंगे, ठीक है। लेकिन सोने की चादरें जो वो चढ़ाएंगे या कुर्बानी जो आकर के करेंगे तो इस कुर्बानी का गोश्त और वो सोने की चादर का सोना वो का जाएगा किधर? वो बुत के पास तो नहीं जाएगा, बल्कि वो जो ये जो सरदार लोग होते हैं ना, ये उनको समेट लेंगे, ये उनको ले लेंगे अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से ना जो सरदार होते हैं उनके पास दौलत जो है वो ऐसे आ रही होती है कि ये दौलत तो बुत के नाम पर जाकर के दी जाएगी, लेकिन असल में इस दौलत का यानी किसकी जेब में आएगी? ये सरदार की जेब में आएगी, ठीक है। उसी तरीके से अतात वाला जो मामला है, तो ये जो बुत की अतात तो वो कोई कर नहीं सकता क्योंकि बुत तो कुछ बोलता नहीं है, सही है, बुत तो कुछ बोलता नहीं है। तो किसकी अतात होगी? असल में इन सरदारों की अतात होगी। तो सरदार इस तरीके से उनकी हुकूमत जो है वो और मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो सरदारों की हुकूमत मजीद मजबूत होगी और सरदारों की दौलत जो है वो मजीद बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से ना वो अवाम उन्नास को ये झूठ बोलते थे कि तुम इन बुतों की परस्तिश करो, बुतों की परस्तिश करो, बुतों की इबादत करो। ठीक है, ये वजह होती है। दूसरा दूसरा क्या उनको फायदा हो रहा होता है, ये तो फायदे की एक शक्ल है ना जो सरदारों को हासिल हो रही होती है, लेकिन सरदारों को दूसरी शक्ल में क्या फायदा हो रहा होता है, दूसरी शक्ल में ये फायदा हो रहा होता है कि अल्लाह ताला हर कौम के अंदर, हमेशा हर कौम के अंदर कुछ नेक लोग रखते हैं, हर कौम के अंदर कुछ नेक लोग रखते हैं। ठीक है, ये नेक लोग जो होते हैं ना, ये तौहीद पर कायम होते हैं, ठीक है, एक अल्लाह की इबादत के ऊपर ये कायम रहते हैं, ये हमेशा नबी नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये नबियों के जो मानने वाले लोग होते हैं ना, ये वो भी हो सकते हैं कभी, जरूरी नहीं है कि हमेशा नबी हर हर कौम के अंदर मौजूद हो, लेकिन नबियों के जो मानने वाले लोग होते हैं वो लोग भी नेक लोग होते हैं। ये जो नेक लोग हैं ना, ये लोगों को बुतों की परस्तिश से हटाते रहते हैं, सही है, यानी ये लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ बुलाने से क्या होगा, सरदारों का नुकसान होगा। ठीक है, कि सरदारों की बात लोग फिर मानना छोड़ देंगे, वो तो समझ जाएंगे कि सरदार जो है वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, अपने जो है वो जेबें भर रहे हैं और अपनी हुकूमत जो है वो उसको और मजबूत कर रहे हैं, तो इस वजह से सरदार जो है ना, ये बुतों की इबादत को और भी ज्यादा प्रोमोट करते हैं, और ज्यादा जो है ना इसको अच्छा बना करके लोगों के सामने पेश करते हैं, ताकि उन नेक लोगों की तरफ ये लोग मुतवज्जा ना हो सके। ठीक है, तो उनको ना फिर इन्हीं चीजों के अंदर फिर हमेशा लगा करके रखते हैं कि ताकि इनकी तवज्जो ही ना जाए नेक लोगों की बात सुनने की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से इन सरदारों को दो फायदे हो रहे होते हैं, एक तो उनकी दौलत और हुकूमत बढ़ रही होती है, और दूसरी ये कि जो इनके दुश्मन होते हैं ना नेक लोग, उन दुश्मनों का रास्ता ये खराब कर रहे होते हैं, यानी उनका उनकी दावत को ये इस तरीके से फिर अवाम नास की नजर से ओझल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस जमाने में भी यही हो रहा होता था, और आज के जमाने में भी एग्जैक्टली यही हो रहा होता है। अब इसके ऊपर बस आखिरी की एक बात करके जो जहन में आ गई है, तो फिर क्लास खत्म कर देते हैं, कि ये जो सरदार लोग कह रहे होते हैं ना कि भाई ये जो बुत हैं, ये बुत तुम्हारी असल खुदा, असल तुम्हारे खुदा हैं, और इन की तुम्हें बात माननी चाहिए, लेकिन ये खुदा जो है ये तो तुमसे डायरेक्ट बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये खुदा जो है ना, ये तो तुम तक अपना मुद्दा नहीं पहुंचा सकते, तो असल में तुम हमारी बात मानो, ठीक है ना, और जो भी तुमने खर्च करना है ना वो इनके ऊपर खर्च करोगे, तो वो दरअसल वो हमें हमें दो तुम ला करके। ठीक है, तो भाई यही बात तो नबी भी कर रहे होते हैं, नबी क्या ये बात नहीं कर रहा होता कि मेरी अतात करो, ये सूरह नूह के अंदर अभी हमने दो मुकामात पर पढ़ा ना, ठीक है, आज जो हमने पीछे से खुलासा भी किया था, उस खुलासे के अंदर ये बात मैंने रिपीट करी थी आयत नंबर 3 के अंदर, वह आती नून के नीचे जेर है, इसका मतलब क्या होता है, मेरी अतात करो, तो नूह अलैहिस्सलाम भी तो यही कह रहे हैं ना, मेरी अतात करो, है ना, अल्लाह की इबादत करो लेकिन अतात मेरी करो, तो ये जो काफिर सरदार होते थे ये भी तो यही कह रहे होते थे, हैं, कि इबादत जो है वो बुतों की करो, यानी उनके सामने सजदा करो, ठीक है, बुतों के सामने सजदा करो लेकिन अतात हमारी करो, और नूह अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे हैं कि सजदा जो है वो मुझे मत करना, सजदा तो खुदा को करना, और खुदा को कैसे सजदा करते हैं, जो काबतुल्ला होता है, ये काबतुल्ला हमेशा से किबला है, ठीक है, काबतुल्ला हमेशा से किबला है, जो बीच में जो किबला जो तब्दील हुआ था ना, वो एक थोड़े से टाइम के लिए तब्दील हुआ था, असल में हमेशा से किबला जो है वो ये काबा शरीफ है, सही है, तो सजदा जो है तो तुम अल्लाह को करो, यानी काबतुल्ला की डायरेक्शन में करो, लेकिन अताअत जो है तुम मेरी करो। जी, कुछ बात समझ में आ रही है, तो भाई जो वो लोग बात कर रहे हैं वही बात तो ये भी कर रहे हैं, तो अब फर्क क्या है भाई, नूह की बात क्यों माने, उनकी बात क्यों ना माने, हालांकि बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं, मेरी मानो और इबादत इस खुदा की करो, एक कह रहा है कि काबतुल्ला की तरफ सजदा करो, दूसरा कह रहा है कि बुतों की तरफ सजदा करो, राइट, ना तो हमने काबतुल्ला से कभी कोई आवाज सुनी है अल्लाह ताला की, और ना जो है वो बुतों से कभी आवाज सुनी अल्लाह ताला की, बात कुछ समझ में आ रही है, तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में, क्यों हम एक इंसान को छोड़ करके दूसरे इंसान की बात माने, या दूसरे को छोड़ करके पहले की बात माने, है ना, क्योंकि इन दी एंड हकीकत तो यही है, इंसान की बात मानो। बात समझ में आ रही है? हकीकत तो यही है ना, इंसान की बात मानो, या नहीं है किसी को कुछ एतराज है इसके ऊपर? बात मेरी समझ में आ रही है? सवाल क्या है, क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं? ना तो बुत में से आवाज निकलती है इंसान तक आती है, और ना आवाज अल्लाह की आवाज आती है इंसान तक पहुंचती है, तो फिर फर्क क्या है? जरा बताए ना, फर्क क्या है? क्यों जहन्नुम मिलेगी अगर जो है वो आप एक इंसान की बात माने तो जहन्नुम मिल जाएगी, और दूसरे इंसान की बात माने तो जन्नत मिल जाएगी? भाई दोनों ही इंसान है, खुदा तो ना इधर नजर आ रहा है ना उधर नजर आ रहा है ना? खुदा की आवाज तो ना इधर आ रही है ना उधर आ रही है, दोनों तरफ इंसान खड़े हुए हैं, लेकिन भाई इस इंसान की बात मानोगे तो जन्नत मिलेगी, इस इंसान की बात मानोगे तो जहन्नुम मिलेगी। व्हाई, क्यों? नबी की क्यों बात माने? वो भी तो इंसान ही है, दो हाथ उसके भी होते हैं, दो पैर उसके भी होते हैं, दो आंखें उसकी भी होती हैं, दो कान और एक नाक उसकी भी होती है, उसकी भी बीवी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, और जो काफिर सरदार होते हैं उनके साथ भी यही सब कुछ होता है। तो क्यों नबी की बात माने भाई? आज तक कभी सोचा है आपने इस बात को? नहीं, जवाब नहीं पता ना इसका, या कोई लंबी कहानी लिखनी शुरू हो गई है अभी तक मुकम्मल नहीं हुई? क्या जवाब है इसका? अल्लाह का फरमान? किसने कहा भाई अल्लाह का फरमान? कभी देखा है आपने अल्लाह को फरमाते हुए? कुरान तो आपको मौलवियों ने बताया मैंने कि ये कुरान है, आपने कभी देखा है अल्लाह ताला के यहां से कुरान आते हुए? जरा सोचे ना, नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा में उतर के आ गए गारे हिरा से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था लोगों से कि मेरी बात मानो? किस बुनियाद पर कहा था कि मेरी बात मानो? कोई बुनियाद होती है ना बात करने की, किस बुनियाद पर कहा था कि मेरी बात मानो? उसी तरह नूह अलैहिस्सलाम ने भी उसी बुनियाद पर कहा था कि मेरी बात मानो। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई क्या बुनियाद है कि जिसकी वजह से हम नबी की बात माने, और क्या बुनियाद है कि जिसकी वजह से हम सरदारों की बात ना माने? कोई बुनियाद होनी चाहिए ना, कोई रीजन होनी चाहिए ना। देखें, फर्क ये होता है कि जो नबी होता है ना वो होता है किरदार का पक्का, सही है, जुबान का सच्चा, सही है, नबी जुबान का सच्चा होता है और किरदार का पक्का होता है, और जो काफिरों का सरदार होता है वो ना जुबान का सच्चा होता है और ना किरदार का पक्का होता है, सही है, ये होता है फर्क। इस बुनियाद पर नबी की बात मानने का की डिमांड होती है हमसे, इस बुनियाद पर, ठीक है, क्योंकि जुबान की सच्चाई ये बंदे को पता होती है, या अवामुन नास भी देख रहे होते हैं कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, कौन जो है वो अच्छे अखलाक का मालिक है, कौन बुरे अखलाक का मालिक है, कौन सादिक है, कौन अमीन है, और कौन नहीं है सादिक और अमीन, ठीक है, ये तो नजर आ रहा होता है ना इस बुनियाद के ऊपर, सही है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार पेश किया ना, क्या पहली दावत में क्या पेश किया? कोहे सफा के ऊपर चढ़ गए और सारे लोगों को बुला लिया, और उनसे क्या पूछा था कि अगर मैं तुमसे कहूं कि पीछे एक फौज खड़ी हुई है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने क्या जवाब दिया था? हाँ, हम आपकी बात मानेंगे क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं, हम आपकी बात मानेंगे। जब ये कंफर्म हो गया ना, फिर उसके बाद अगली बात करी कि मैं तुम्हें एक दिन से डराता हूं कि जिस दिन तुम्हें तुमसे हिसाब होगा कि तुम जो कुछ कर रहे हो दुनिया के अंदर। अब मेरी ये बात भी मानो क्योंकि मैं सादिक और अमीन हूं, तुम खुद कह रहे हो, राइट? कोई काफिर सरदार अपने आप को सादिक और अमीन के तौर पर पेश नहीं कर सकता, न भी कर सकता है। ये है फर्क, वरना इंसान दोनों तरफ होते हैं। खुदा ना उधर नजर आता है ना इधर नजर आता है, ना उधर उसकी आवाज आती है ना इधर इसकी आवाज आती है, ठीक है? दोनों तरफ इंसान होते हैं, एक तरफ सच्चे इंसान होते हैं, एक तरफ झूठे इंसान होते हैं, ठीक है? अब हम जरा अपनी अपने गिरेबान में झांक करके देख लें कि हम जो खुदा से डराते हैं ना अपने बच्चों को या दूसरों को, राइट, तो क्या हम खुद खुदा से डरते हैं? जो हम अपने बच्चों को सच बोलने के लिए कहते हैं, दीन को अहमियत देने के लिए कहते हैं, तो क्या हम खुद सच बोलते हैं, हम खुद अहमियत देते हैं? तो क्यों बात हमारे बच्चे हमारी क्यों बात माने, राइट? दूसरे लोग जो है वो हमारी दावत को क्यों तस्लीम कर लें जबकि हम खुद झूठे हैं, हमारे नजर में खुद दीन की अहमियत नहीं है? या तीसरी प्रायोरिटी, दसवीं प्रायोरिटी हम देते हैं दीन को, और हम बच्चों से एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो दीन को पहली प्रायोरिटी दें। दीन वालों को पहली प्रायोरिटी दें, दुनिया वालों को नहीं दें प्रायोरिटी? है, हम तो खुद दुनिया वालों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, हम तो खुद दीन वालों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते हैं। तो हम हमारा जो किरदार है ना, ये दरअसल दावत और तबलीग वाला किरदार है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है? तो दावत और तबलीग के लिए तो भाई आप खुदा से डरा रहे होते हैं, तो खुदा को आप दिखा तो नहीं सकते किसी को भी। आपने तो अपना किरदार पेश करना है ना, अपनी जुबान पेश करनी है ना, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सच तो हमें बोलना ही नहीं आता, झूठ को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, बुराई बुराई, ठीक है? लेकिन हम चाहते हैं कि सारी दुनिया नेक बन जाए और दीनदार बन जाए और मेरी बात मानना शुरू हो जाए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है? तो भाई ये बड़ी कॉमन, बड़ी बड़ी बुनियादी सी बात है कि यानी हम खुदा को किसी को नहीं दिखा सकते कि भाई ये खुदा है और इसकी बात माननी चाहिए तुम्हें, ठीक है ना? हमें तो अपनी अपनी ही यानी जुबान को दुरुस्त करना है और अपने किरदार को दुरुस्त करना है। अगर हम यही काम नहीं कर रहे हैं, बाकी हम जो है वो एक से एक जो है वो किताबें और मैसेजेस और व्हाट्सएप और यानी क्या क्या जो है वो चीजें कोट करते रहते हैं लोगों को, तो ऐसे दावत और तबलीग नहीं होती है। दावत और तबलीग का तरीका ये होता है कि इंसान खुद खुदा से डरे, ठीक है? पहले खुद खुदा से डरे और उसके बाद फिर दूसरों को डराने की कोशिश करें, ठीक है? यहाँ पर हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।